पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार का प्रसारण आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो से। आइए सुनते हैं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री संजीव लवानिया का व्याख्यान।
सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से।
नमस्कार मित्रों, मैं संजीव कुमार लवानिया, सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र समाज कार्य पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, आप सभी का इस पठन पाठन की श्रृंखला में स्वागत करता हूँ। आज जो विषय मैं लेने जा रहा हूँ वो समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत जो मौलिक अवधारणाएं हैं, बेसिक अजम्पशंस हैं, उनको मैं लेने जा रहा हूँ और यह बीए और एमए दोनों में ही समान रूप से उपयोगी हैं। तो इन मौलिक अवधारणाओं की जो आवश्यकता है उसके बारे में बात करूँगा मैं। पहले समाजशास्त्र को अगर पढ़ना है, समझना है आपको, या उसके बहुत सारे वैज्ञानिक विचारधाराओं को और ज्ञान को समझना है, तो यह तभी संभव हो सकता है जब हम जो उसमें जो उपयोग की जाने वाली जो भाषावली है, शब्दावली है, उसको समझ लें, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना समझना संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि वे अवधारणाएं जो सामान्य बोलचाल में काम ली जाती हैं उनके अर्थ को संबंधित विज्ञान के संदर्भ में समझें। समाजशास्त्र की पुस्तकों को पढ़ते समय ऐसे अनेक शब्दों को हम पाएंगे जो सामान्य बोलचाल के हैं, जैसे समाज, समुदाय, विवाह आदि। समाजशास्त्र विषय को समझने के लिए आवश्यक है कि हमें इस विषय से संबंधित मूल अवधारणाओं का पूर्ण ज्ञान हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख मौलिक अवधारणाएं जैसे समाज, सामाजिक संरचना, समुदाय, संस्कृति, प्रस्तुति, भूमिका, सामाजिक समूह आदि का हम आज शुरुआत कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम समाज को लेते हैं, समाज यानी सोसाइटी। तो सबसे पहले हम इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। समाज शब्द का प्रयोग साधारण बोलचाल की भाषा में बहुत अधिक किया जाता है। सामान्य बोलचाल तथा समाजशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। समाज शब्द का प्रयोग साधारणतः व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है, जैसे हम जानते हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, महिला समाज आदि रूप में इस शब्द का सामान्य जन प्रयोग करते हैं। समाज शब्द का प्रयोग विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे सामाजिक मानव शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, इनमें भी भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में जनजातियों को आत्म समाज से संबंधित किया जाता है। राजनीति विज्ञान में समाज से अभिप्राय व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है। तो अर्थशास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें परस्पर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण समाज विज्ञानों में मूल अवधारणाओं का विशेष अध्ययन किया जाता है। चूँकि समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है, इसीलिए इसके अर्थ का होना अति आवश्यक है। समाज के अर्थ को और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसकी कुछ परिभाषाओं पर भी प्रकाश डालेंगे, इनको भी हम समझेंगे। जैसे कुछ प्रमुख समाजशास्त्री हैं मैकावरो, पेज, पार्सन्स, र्यूटर, कूले, तो एक एक करके हम यहाँ समझते हैं। कूले ने लिखा है कि समाज स्वरूपों या प्रतिक्रियाओं की जटिलता है। र्यूटर ने भी इसको और आगे बढ़ाया, समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों में तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। पार्सन्स जो समाजशास्त्री हैं वो लिखते हैं, समाज को उन संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। मैकावरो पेज, जिनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है समाजशास्त्र की परिभाषा में, इसको हमें निश्चित रूप से अच्छे से समझना चाहिए। समाज की परिभाषा में उसे एक व्यवस्था बताया है, उन विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो इस व्यवस्था का निर्माण करती हैं, जैसे समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों तथा विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। उनके अनुसार रीतियां, कार्यप्रणालियां आदि का पारस्परिक सहयोग, समूह, विभाजन, नियंत्रण और स्वतंत्रताएं समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा है कि समाज कोई वस्तु नहीं या जड़ नहीं, समाज कभी स्थिर नहीं रहता। इन्होंने परिभाषा में आगे लिखा है, यह सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अंडरलाइन कर लें कि मैकावर पेज ने जो व्याख्या की है समाज की वो यह है कि सह सामाजिक संबंधों का जाल है, यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। यानी मैकावर पेज कहते हैं, अगर इसको एक शब्द में समझा जाए, सोसाइटी इज़ द वेव ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप, यानी अंतः संबंध और अंतः क्रियाओं का जाल है। समाज शास्त्रियों जैसे कूले, रूटर, पार्सन्स, मैकावर और पेज की समाज की परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज एक अमूर्त यथार्थ है अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य क्रिया से उत्पन्न संपूर्ण मानव संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जो रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, विभाजनों, नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं से निर्मित होती है। समाज की विशेषताएँ कई सारी हैं, लेकिन जो हम इन परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे जो उभर के आती हैं उनमें एक रीतियाँ, प्रत्येक समाज में मान्यता प्राप्त रीतियाँ होती हैं। रीतियों के अनुसार प्रत्येक सदस्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं। इनके द्वारा ही समाज में व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें रीतियों के अनुसार सामाजिक संबंध स्थापित करता है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, मित्र पड़ोसी आदि रीतियों के अनुसार परस्पर अंतरक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। जैसे जैसे समाज का रूप जटिल होता जाता है, रीतियाँ भी स्पष्ट और सुनिश्चित होती जाती हैं। रीतियों का उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जाता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है, कार्य प्रणालियाँ। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा निश्चित विधियों से करता है, जिसे समाजशास्त्री संस्थागत साधन कहते हैं। मैकावर पेज ने इन्हीं को कार्यप्रणाली कहा है। समाज जटिल व्यवस्था है जिसमें मानव कार्य करने की प्रणालियों के अनुसार अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैकावर और पेज कहते हैं कि व्यक्ति समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं को सरलता से पूर्ण करता है, जिसकी व्यवस्था निश्चित कार्य प्रणालियों द्वारा की जाती है। ये कार्य प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार से हो सकती हैं, लेकिन कोई भी समाज कार्य प्रणालियों के बिना अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। कार्य प्रणालियाँ समाज को संगठित, व्यवस्थित, नियंत्रित और संतुलित रखती हैं। अगर समाज के सदस्य अपने मनमाने ढंग से उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे तो समाज असंतुलन तथा अंत में विघटन की स्थिति में पहुँच जाएगा। ऐसे इनकी विशेषताओं में एक विशेषता है सत्ता। मैकावर पेज ने कार्य प्रणालियों के बाद सत्ता को रखा है। उनका अभिप्राय यह है कि समाज के सदस्यों द्वारा अगर कार्य प्रणालियों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें रोकने तथा दंड देने के लिए सत्ता का होना आवश्यक है। सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों में सत्ता होती है जो व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित रखती है। परिवार में यह सत्ता परिवार के मुखिया के पास होती है, वार्ड में वार्ड पंच, ग्राम पंच, जाति में जाति पंच, पंचायत में सरपंच, जिले में जिला अधिकारी तथा राष्ट्र के इस पर राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च सत्ता होती है। सत्ता सभी समाजों में होती है। समाज व्यवस्था के लिए सत्ता का होना अति आवश्यक है। पारस्परिक सहायता, यह भी एक इसका विशेषता है। सामाजिक संबंधों का जाल है। यह जाल तभी बनता है जब अनेक सदस्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। व्यक्ति परस्पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर वे एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो अंतःक्रिया नहीं होगी, सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवहार स्थापित नहीं होंगे, समाज का निर्माण भी नहीं होगा। इसीलिए समाज की मौलिक विशेषता पारस्परिक सहायता और सहयोग पर ही है। इसके बिना समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। एक और इसकी विशेषता, जैसे समूह और विभाजन। सामाजिक संरचनाओं में अनेक छोटे बड़े समूह होते हैं जिनको अनेक आधार पर देख सकते हैं। सामाजिक संरचना का विभाजन खंडों, श्रेणियों और वर्गों में किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में अनेक समूह होते हैं। इनका सबसे छोटा आकार एकांकी परिवार है। अनेक एकांकी परिवार मिलकर परंपरागत संयुक्त परिवार बन जाते हैं। ऐसे कई संयुक्त परिवार मिलकर बड़ा समूह, वंश समूह, फिर गोत्र समूह, फिर उपजाति, उसके बाद जाति के बड़े समूह के आकार बन जाते हैं। इनमें अंत्यक्रिया और प्रतिक्रियाएँ समाज का निर्माण करती हैं। इसीलिए यह समूह और विभाजन की विशेषता समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। और एक अन्य विशेषता है मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण एक संतुलन शक्ति की भूमिका निभाता है। अगर व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो प्रत्येक सदस्य मनमाने तरीके से व्यवहार करेगा। संपूर्ण समाज में अनियमितता और अव्यवस्था फैल जाएगी जो समाज के अस्तित्व को ही मिटा देगी। समाज में सभी सदस्य एक दूसरे से व्यवहारों की अपेक्षा रखते हैं। सभी पूर्ण रूप से अपेक्षित व्यवहार नहीं कर पाते। वास्तविक व्यवहार और अपेक्षित व्यवहार का अंतर कम होना चाहिए, तब तो समाज बना रह सकता है। अगर यह अंतर अधिक होगा तो सामाजिक संबंध विघटित हो जाएंगे। इस अंतर को कम करने के लिए आवश्यक है व्यवस्था मानव के व्यवहारों पर नियंत्रण रखे। जनरीति, प्रथा, परंपरा, जनमत, कानून, धर्म, शिक्षा, नैतिकता मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसके अभाव में समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। एक और विशेषता है स्वतंत्रता। मैकावर पेज के अनुसार समाज में नियंत्रण के साथ साथ सदस्यों के व्यवहार में स्वतंत्रता का प्रावधान भी होता है। व्यक्ति के व्यवहार को उस सीमा तक नियंत्रित किया जाता है जिस सीमा तक वह अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सकता हो। व्यक्ति अपनी सीमा में स्वतंत्र है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्रता तथा नियंत्रण दोनों एक सीमा तक ही होते हैं। अगर अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी तो उससे भी समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक नियंत्रण भी अधिक समय तक सदस्यों पर नहीं रखा जा सकता है, वह भी समाज के संतुलन, संगठन और निरंतरता के लिए हानिकारक होता है। ऐसे एक विशेषता है सामाजिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक स्थिति। इसको जरा समझते हैं। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंध और भौतिक संबंध को उदाहरण देकर समझाया। जैसे हम देखते हैं एक मेज है घर में और एक उस पर टाइपराइटर रखा है, यानी टंकण यंत्र रखा है। इन दोनों को एक दूसरे के अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। दो या दो से अधिक मनुष्य जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन्हें परस्पर एक दूसरे के अस्तित्व का ज्ञान होता है। एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उससे सामाजिक संबंध बनते हैं जिससे समाज का अस्तित्व संभव हो पाता है। इसको मैकावर पेज ने सामाजिक संबंधों का मनोवैज्ञानिक लक्षण बताया है जो समाज का निर्माण करता है। एक और विशेषता है सामाजिक संबंधों का विस्तार। समाज जितना छोटा, सरल और सीमित होगा उसके सदस्यों को परस्पर संबंध के प्रकार भी सीमित तथा कम होंगे। जैसे जैसे समाज जटिल होता जाएगा वैसे वैसे सामाजिक संबंधों के प्रकार भी बढ़ते जाएंगे। ग्रामीण समाज में संबंध कम जटिल तथा सीमित होते हैं। महानगरीय समाज में व्यक्ति के सामाजिक संबंध अनेक लोगों से होते हैं, संबंधों के प्रकार असंख्य हो जाते हैं। सरल और छोटे समाज की तुलना में बड़े और जटिल समाज में सामाजिक संबंधों का विस्तार व्यापक होता है। एक और अन्य विशेषता, जैसे समाज मनुष्य तक सीमित ही नहीं। मैकावर और पेज का कहना है कि समाज तो अन्य जीवों में भी पाए जाते हैं। अन्य जीव जैसे चींटी, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़े, घोड़े, कुत्ते आदि में सामाजिक संगठन तो मिलता है लेकिन इनके पास संस्कृति नहीं है। डेविड का कहना है कि मानव समाज के पास संस्कृति है, अन्य जीवों के समाज के पास संस्कृति नहीं है। अन्य जीव जन्म से सामाजिक प्राणी तो हैं, मानव जीवन के बाद सामाजिकता को सीखता है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन करता है। इसी तरह एक और विशेषता है, समाज में समानता और भेद दोनों सन्निहित हैं। जब मानव आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरों के साथ अंतर्क्रिया करता है तो उसके आधार परस्पर समानता और भिन्नता दोनों होती हैं। अनेक बातों में उनमें समानता होती है, जैसे उनके लक्ष्य समान है। भिन्नता भी उनमें पाई जाती है, जैसे साधनों में भिन्नता का होना। शिक्षक और छात्र परस्पर क्रिया करते हैं, उनमें समानता और भिन्नता दोनों होती हैं। समानता इस आधार पर है कि एक ज्ञान देता है, दूसरा ज्ञान लेता है। आयु और पद के आधार पर भिन्नता मिलती है। परिवार में पति पत्नी को देखें तो उनमें भिन्नता लिंग भेद के आधार पर मिलती है। दोनों परिवार को बनाए रखना चाहते हैं, यह समानता है। दोनों का लक्ष्य बच्चों का पालन पोषण करना है। उनकी भूमिका, पद, कर्तव्य, अधिकार के आधार पर उनकी अनेक भिन्नताएं हैं। अगर समानता हो और भिन्नता न हो तो वह चींटियों जैसा समाज बन जाएगा। तो समाज में समानता और भेद दोनों ही सन्निहित हैं, ये हमने समझा। एक और इसकी विशेषता है, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसको हम ऐसे समझें, मैकावर पेज कहते हैं कि मनुष्य अपनी सुरक्षा, सुविधा, पालन पोषण, शिक्षा, साज सज्जा, आवास और समाज द्वारा प्रदत्त अन्य अनेक निश्चित सेवाओं का उपयोग करता है। अरस्तु ने इन बातों को मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कहकर व्यक्त किया है। अनेक विद्वानों ने लिखा है कि अकेले रहने में मनुष्य की भलाई नहीं है। दंडों में एकांत कारावास सबसे कठोर दंड है क्योंकि यह सबसे अधिक असहनीय होता है। कोई भी व्यक्ति समाज की आवश्यकता से स्वतंत्र नहीं है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज की आवश्यकता होती है। तो ये हमने इसके कुछ विशेषताएं समझी। कुछ अन्य जो स्पेसिफिक इसकी जो विशेषताएं हैं उनको भी हम समझते हैं। वो ऐसे हैं, जैसे हमने अभी समझा, कई परिभाषाएं हमने अभी उनको डिस्कस किया, तो उनमें सबसे बड़ा एक जो निकल के आया वो था अमूर्तता, यानी जो दिखाई न दे। तो समाज क्या है, वो दिखाई नहीं देता है। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, राइट लिखते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है या समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का अनुभव कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों का कोई आकार नहीं होता है, इसीलिए सभी ने कहा है कि समाज अमूर्त है। मैकावर तथा पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का परिवर्तनशील रूप है, व्यक्तियों की पारस्परिक अनुभूति का परिणाम है। इससे उन्होंने सामाजिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक स्थिति कहा है। मानवीय व्यवस्था, सामाजिक संबंध, अंतःक्रिया प्रक्रियाएं आदि अमूर्त हैं जो समाज का निर्माण करती हैं। इसी तरह दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमने जो अभी जो लक्षण निकाला है इसमें, एक अमूर्तता थी। दूसरा है पारस्परिक जागरूकता। जब हम पारस्परिक जागरूक होते हैं तभी उस समाज का निर्माण होता है। जैसे दो या अधिक व्यक्तियों में अंत्यक्रिया के लिए आवश्यक है कि उनको एक दूसरों की प्रस्तुति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, दूसरे लोग भी उनकी प्रस्तुति से अवगत होने चाहिए, लोग एक दूसरे की स्थिति तथा भूमिका से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित होने चाहिए। अगर उनमें एक दूसरे के प्रति जागरूकता नहीं होगी तो अंत्यक्रिया भी असंभव है। यही अंत्यक्रिया समाज का निर्माण करती है। दूसरा एक जो स्पेसिफिक इसका जो लक्षण है या विशेषता है वो ये है कि सहयोग और संघर्ष। हम देखते हैं कि समाज सहयोग और संघर्ष दोनों से गुजरता है, ना तो अकेला हमेशा कभी समाज में सहयोग देखने को मिलता है, ना ही हमेशा संघर्ष रहता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इस कथन से यह सामने आता है कि लोग परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम की भावना रखते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं कि लोग परस्पर एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते। जो लोग खुशहाल हैं, उनके पास सुख सुविधाएं हैं, उनमें से वे लोग संघर्ष करते हैं। जिनके पास इन सब का अभाव है उनसे वे संघर्ष करते हैं। मार्क्स का सिद्धांत है कि समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। चार स्कूलों में मैकावर तथा पेज का कहना है कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक जो बड़ा स्पेसिफिक इसका जो लक्षण है विशेषता है वो ऐसे है, अन्योन्याश्रिता यानी एक दूसरे पर निर्भर, यानी इंटरडिपेंडेंसी। अन्योन्याश्रितता का शाब्दिक अर्थ एक दूसरे पर निर्भर रहना है। समाज की संपूर्ण विशेषताओं में अन्योन्याश्रितता का अपना विशेष महत्व है। समाज की उत्पत्ति और विकास, संतुलन और संगठन तथा निरंतरता और परिवर्तन आज समाज के सदस्यों की इंटरडिपेंडेंसी पर निर्भर करते हैं। समाज के संगठन, प्रकृति तथा अन्योन्याश्रितता का परस्पर सीधा संबंध है। आगे हमने जो इसके विशेषताएँ समझी, अभी हम समझेंगे एक समाज होता है। हालांकि इसको हम समाजशास्त्र में ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक समाज क्या है। एक समाज को जब हम समझते हैं तो ऐसे है, कई हम इस पर समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण है उसको भी समझते हैं। जैसे एक समाज क्या होता है, मेंजर कहते हैं, एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह समझा जाता है जिनमें सामान्य क्रियाओं की कुछ क्रियाओं के कुछ प्रकारों में सचेतन भागता होती है। इसी को रूटर कहते हैं कि एक समाज में भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एक समाज को जिन्स वर्ग भी समझाते हैं कि एक समाज व्यक्तियों का वह संग्रह है जो किन्हीं संबंधों अथवा व्यवहारों के तरीकों से संबंधित हैं, जो उनको दूसरों से अलग करते हैं, जो उनके संबंधों में नहीं आते या जो उनसे व्यवहार में भिन्न होते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर एक समाज को, कि एक समाज व्यक्तियों का बड़ा समूह है, नंबर एक। नंबर दो, एक समाज मूर्त है क्योंकि यह व्यक्तियों के संगठन से बनता है। नंबर तीन, एक समाज का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर चार, एक समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों तथा क्रियाओं में समानता होती है। नंबर पाँच, एक समाज के सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। जहाँ तक समाज और एक समाज में अंतर की बात है उसको भी हम स्पष्ट करते हैं यहाँ, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड अ सोसाइटी। तो पहला जो इसका जो पैरामीटर है वो है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज और एक समाज में मौलिक अंतर है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है या जटिल व्यवस्था है, वहीं एक समाज इसकी तुलना में व्यक्तियों का सिर्फ समूह है। मूर्तता, सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं, इसलिए अमूर्त है, उसे देखा नहीं जा सकता है। वहीं एक समाज व्यक्तियों का समूह है या संगठन है, इसे देखा जा सकता है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, इसीलिए एक समाज की प्रकृति मूर्त है। ऐसे एक पैरामीटर है जटिलता। मैकाइवर तथा पेज ने परिभाषा में समाज को जटिल बताया है। इनका कहना है, समाज जटिल सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो हमेशा परिवर्तित रहता है। समाज की तुलना में एक समाज सरल व्यवस्था है। समाज की तुलना में एक समाज का संगठन सरल है। वहीं भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण में हम देखें समाज और एक समाज को, तो समाज विशाल क्षेत्र में फैला होता है, उसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं जो साधारणतया एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के होते हैं। कभी कभी एक समाज की शर्त होती है जिसके अनुसार अन्य क्षेत्र के व्यक्ति उसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। वहीं जो एक और इसका जो पैरामीटर है उत्तरदायित्व, समाज एक क्षेत्र विस्तृत होने के कारण व्यक्तियों के उत्तरदायित्व भी असीमित होते हैं। वहीं एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं, इसलिए उनका एक समाज के प्रति निश्चित और असीमित लेकिन स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है। वहीं एक और पैरामीटर है जो समरूपता, समाज विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों से बनता है, इसीलिए समाज में व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसकी तुलना में एक समाज का क्षेत्र सदस्यता, उत्तरदायित्व आज सीमित होने के कारण उनके व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में भी काफ़ी समानता पाई जाती है। इसीलिए ये हमने देखा समाज और एक समाज में अंतर। इसलिए आज हमने जो समझा उसमें जो समाज क्या होता है, एक समाज क्या होता है, समाज की विशेषताएँ क्या हैं, समाज और एक समाज में अंतर क्या है, ये हमने आज समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना सा सुंदर सा सपना